أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله ایک اور خوبصورت دن آپ کے اور میرے سامنے اللہ نے بلایا اور آپ نے لبیک کہا اللہ ہمیشہ ہمیں نیکیوں کے مواقع پہ لبیک کہنے والا بنائے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2024 DQ 2024 آج ہم اس میں سے ولو اننا پارا نمبر 8 کریں گے الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی پارے اللہ نے کروائے دعا کروں گی کہ آج کے پارے میں ان سب سے زیادہ ہمارے لیے خیر لکھی ہو اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ لے سکیں ہر روز کی طرح پچھلے پارے کا ہلکا سا جست لیتے ہوئے آگے چلیں گے اور پچھلا پارا جو کہ الحمدللہ معرفت الہی کا پارا تھا جس میں ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت 83 سے 120 اور الانعام 1 سے 110 کیا اعتراف حق تھا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی معرفت ہو جائے اور بندہ اعتراف نہ کرے حق کا کیونکہ وہ تو پھر دل میں بات رہتی نہیں اور جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھے گا پھر ہم نے اس میں بنی اسرائیل کے ناطے سے غیر ضروری سوالات کی ممانعت کو دیکھا تھا اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے ان معجزات کی صورت میں جو ان کو دیے گئے جو بڑے انیوژل معجزات تھے ان کا تذکرہ دیکھا اور 18 پروفٹس کے نام کے بعد اللہ کا یہ قول کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے بھی پچھلے اعمال ضائع کر دیتا گویا کہ پچھلا پورا پارہ جو تھا وہ شرک کی کباختوں سے بھرا ہوا تھا شرک 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 اور جتنا زیادہ زندگی میں شرک ہوتا ہے اتنا شکر کم ہوتا ہے اور اگر شکر ہے تو شرک خود بخود نکلتا جائے گا پھر اس کے بعد ہم اگر آج دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنو کی پکار اس پورے پارے میں ایک بار بھی نہیں 89 ٹائم ہے ٹوٹل اور اس میں سے ایک بار بھی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ پارے چل رہے ہیں جس میں باہر کی پکاروں سے زیادہ اندر کی پکاروں کو بھارا جا رہا ہے فطرت پہ پڑے ہوئے جو پردے ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے یہی اس پارہ انشاءاللہ آگے ہم سورۃ الاعراف کو جب نیکسٹ پارے 9 میں بھی کنٹینیو کریں گے تو اسی کے اندر وعدہ الست کی آیت بھی آنے والی ہے تو آج اس پارے میں آپ انتظار نہ کیجئے گا کبھی کبھی آپ کا کوئی پیارا آپ کو کہہ دیتا ہے نا کہ اب میں آپ کو فون نہیں کروں گی ڈونٹ ویٹ فار مائی کال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج میں آپ کو کال نہیں کروں گا اس پارے میں آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ابھی تک آپ نے جو سیکھا ہے اس سے آ منو کی پکار کے قابل ہوئے بھی ہو کے نہیں اب چلتے ہیں آج کے پارے پہ آج کا پارہ فل آف جیمس بھی ہے نمبر 2 نیکیوں کے اس ورژن سے بھرا ہوا پارہ جس کے بارے میں اگر آپ کہہ دیں کہ مین میڈ گڈ ڈیڈز انسانوں کی بنائی ہوئی نیکیاں فیبریکیٹڈ اور دین کے وہ پیغام کو اگر پچھلے پاروں سے جوڑ دوں سورۃ مائدہ کے آغاز میں دیکھا تھا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا تم پر ہم نے اسی پارے کے ساتھ دیکھا تھا نفاذ شریعت امت مسلمہ کا نہیں پچھلی قوموں کا بھی فریضہ تھا کوئی بھی چیز جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہیں یا میڈیکل کے پروفیشن سے منسلک ہیں تو جب آپ پڑھ چکے آپ گریجویٹ ہو چکے تو پھر اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی تھی لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کریں اور اطاعت اپنے نفس کی اپنے خاندان کی اپنے معاشرے کی کریں اور پھر ان کاموں پہ لیبل وہ لگاتے ہیں گڈ ڈیڈ کا تو رائٹیس ڈیڈس ورسز گڈ ڈیڈس پیچھے ہم سورت بکرا میں آیت بیر 177 میں پڑھ چکے آج کے پارے کا تھیم ہے بدعت ورسز سنت اللہ کا ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے یا بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو جینے مرنے کے طریقے سکھائے और लोग उसके साथ सीख लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अल्लाह ने कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 से ज़ायद बार फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, रसूल की सूरत में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है, तो बस उनके पीछे लगते जाओ। कुछ लोगों ने इसको सिर्फ दाढ़ी की लंबाई, टखनों का से ऊपर शलवार का होना और नमाज के कुछ मखसूस अफाल से जोड़ दिया और फिर उसमें भी झगड़ने लग गए। हालांकि अल्लाह के नबियों का मकसद सिर्फ नमाज रोज़ा सिखाना नहीं होता, वो लाइफस्टाइल में एक रोल मॉडल होते हैं, एक शौहर होने के नाते, एक बाप होने के नाते, और इसी तरह से वो रहबरे कामिल की एक अमली तस्वीर है। जिस सीरीज़ को हमने 2 दफ़ा किया है, तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 19 मुख्तलिफ रूप हैं उसमें, कि आप हर रूप में एक मुकम्मल इंसान थे। होता क्या है कि पहले दौर के लोग नबी के कदमों पर कदम रख के चलते हैं, सहाबा कराम कुछ ऐसे ही थे। हत्ता कि सहाबा कराम की अगर आप मिसालें और उनकी कहानियाँ देखें और सुने, तो कभी कभी तो इतनी सी छोटी सी बात करने से भी रुक जाते थे जिसके बारे में उनको यकीन नहीं होता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि नहीं। कई कामों को उन्होंने खुद ही गलत कह दिया क्योंकि उनको भी यकीन नहीं था कि अल्लाह के नबी ने इसके बारे में क्या कहा है और क्या नहीं किया। आप और मैं आज इल्म की एक महफिल में बैठे हैं, और इल्म की महफिलें बड़ी बाबरकत होती हैं। इमाम इब्ने कय्यिम का एक कौल याद आ गया कि आदमी अपने घर से तो हमा पहाड़ों की तरह गुनाहों के साथ निकलता है। तसव्वुर में लाइए अपने आप को, हम सब के पास गुनाहों के अंबार हैं। फरमाया कि तहामा पहाड़ की तरह गुनाहों के साथ निकलता है, तो जब वो इल्म सुनता है तो डर जाता है, और गुनाहों से रुजू करता है तो अपने घर की तरफ लौटते हुए, इस पर कोई गुनाह नहीं होता। लिहाजा इल्म वालों की मजलिसों को ना छोड़ो। ये उनका एक कौल मिफ्ताह दारुसआदा बुक है, उसके अंदर मौजूद है। तो आज मैं जितनी भी बात कहूँगी इस दुआ के साथ करूँगी कि ये मेरे भी गुनाहों के गिराए जाने का ज़रिया बने, इसकी माफ़ी का ज़रिया बने, और इसके साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला हमें इल्म ऐसा दे जो सच्चा इल्म हो। हर बंदा नेकियों के नाम पे ही कुछ कर रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो नेकी कैसे है, तो बिदअत क्या होती है नए लोगों को भी इसका नहीं पता। इंशाल्लाह जहाँ आयतें आएंगी मैं साथ साथ उसका फ़र्क बताऊँगी। यहाँ एक रिवायत नोट कर लीजिए, हज़रत हसन से है ये, जब कोई कौम अपने दीन में कोई बिदअत ईजाद करती है तो अल्लाह ताला इसकी सुन्नत छीन लेता है, फिर वो इसे रोज़े क़यामत तक इनकी तरफ नहीं लौटाता। ये सुनन दारमी की रिवायत है, यानी बिदअत दीन में इजाफे हैं। एक जनरल रूल आज से ही लिख लीजिए, दुनियावी चीज़ों में लेटेस्ट मॉडल सबसे अच्छा होता है, अपग्रेडेड। लोगों से ज़रा पूछिए किससे कैसे सुनाएंगे आपको, ये कौन सा प्रो है, ये कौन सा वर्जन है, ये किस साल का मॉडल है, ये कौन सी जनरेशन है। भाई क्या फ़र्क है 6 और 5 जनरेशन में? नहीं, उसके फीचर से ज़्यादा है। आपको 24 की गाड़ी लेनी है या 23 की? नहीं, अब तो फिर 24 की ही लेंगे जो नया मॉडल आएगा। हर चीज़ में अपग्रेड 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 चल रहे हैं। दुनियावी चीज़ें जिसको आज हम गैजेट कह सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं और ABC, उसमें हमेशा जितना आप आगे आगे जाते जाएंगे लेटेस्ट सबसे एडवांस होगा। दीन में जितना पीछे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, प्योर। 3 मिसालें ले लीजिए। दूध खालिस कहाँ से मिलेगा? जहाँ से आता है, भैंस। बाद वाले कभी कुछ डालते हैं तो कभी कुछ निकालते हैं। आज भी ऑर्गेनिक मिल्क के नाम पे दूध डबल कीमत का मिलेगा आपको सेचुरेटेड और पैस्चराइज दूध की निस्बत, ठीक है? कहते हैं नहीं जी, नथिंग एडेड, ऑर्गेनिक कहते हैं इसको अमेरिका में, नॉर्वे में इसको क्लोगस कहते हैं, और पेरिस में इसको बीओ कहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला जैसे तौहीद, पिछले पारे में हमें ऑर्गेनिक वर्शिप सिखाई गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, मारफत इलाही। इस पूरे पारे में आपको मारफत रसूल मिलेगी, यहाँ से लेकर आज की ईमान की शाखों तक। क्यों आए रसूल, क्यों पत्थर खाए, क्यों वो गए ताइफ की गलियों में, क्यों मक्का से मदीना के रास्ते लिए, क्यों अपनों को बेगाना बनाया? आपको मुझे प्योर सच्चा दीन देने के लिए। लेकिन जब कौमों के ऊपर वक्त की धूल पड़ती है तो नबियों का दीन ख़त्म हो जाता है। आज भी आप देख लीजिए, आगे अभी हम पढ़ेंगे बारे में, और मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा आज के बारे में। ऐसी फरसूदा रस्में मक्का वालों की, कि खुद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फॉलोअर कहते थे लेकिन वक्त के साथ इब्राहिम के दीन पर बिदात की धूल पड़ चुकी थी। तो आप कह सकते हैं कि बिदत क्या है, इसके बारे में इमाम इब्ने तैमिया का एक कॉल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। वो कहते हैं कि अल बिदत तो हब्ब इला इबलीस, और ये भी नोट कर लीजिए कि आज के बारे में इबलीस का बहुत जिक्र है, सूरत अल अनाम से लेकर सूरत अल अराफ के उस हिस्से तक जो आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बिदत असल में शैतान का माइंड मैप है, वो अपने दिमाग से कुछ चीज़ें इख्तरा करता रहता है, सोचता रहता है, ये करते हैं वो करते हैं और उसके बाद करते हैं। तो इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि बिदत इबलीस को बड़ी प्यारी लगती है, हत्ता के गुनाहों से भी ज़्यादा महबूब है, क्योंकि गुनाह करने वाला जानता है कि वो गुनाहगार है, बस वो तौबा कर लेता है। ऐसी है ना, आप किसी को आर दिलाते हैं तुमने ये गुनाह किया, वो कहेगा अच्छा अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन बिदत करने वाला अल मुबतदी, कहते हैं बिदत की पैरवी करने वाला मुबतदी, वो ये गुमान करता है कि मैंने तो अच्छा काम किया है, तो वो तौबा नहीं करता। कितना एनरिच जुमला, बिदत इबलीस को गुनाह से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि गुनाहगार ये जानता है कि वो गुनाहगार है, इसलिए वो तौबा कर लेता है। इसके बरक्स बिदत करने वाला ये गुमान करता है कि मैंने तो नेकी की है, लिहाजा वो तौबा नहीं करता। यानी आप कह सकते हैं कि बिदत नेकी के नाम पर ऐसा काम करना कि जो अल्लाह के नबी सल्लम ने नहीं किया, और इसके बारे में आपने बहुत सारी रिवायतें भी सुनी होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खुतबा इस जुमले से खाली नहीं होता था कमोबेश, और वो क्या था, इन शुर्रुल उमूरु मुख्दसातुहा व कुल्लु मुख्दसतिन बिदा व कुल्लु बिदतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाने वाली है। तो बस वही बात है, नीयत अच्छी होती है, इरादे होते हैं, कुछ अच्छा करने के ख्यालात होते हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो काम अच्छा लगता है। और अमूमन लोग ऐसे कामों पे कहते हैं क्या हरज है, क्या हरज है। हाँ, हरज ये है कि फिर मैं भी करूँगी तो आप भी करिए। देखिए ना, आप अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं आप स्टॉप साइन पे रुकिए, रात का वक्त है, 8-9 बजे आप जा रहे हैं, सड़क खाली पड़ी है, आप नहीं रुकते, पुलिस मैन रोक लेता है, क्यों नहीं रुके। आप कहते हैं क्या हरज है, ना इधर से गाड़ी आ रही थी ना उधर से, अक्ल में भी नहीं आती बात के रुका जाए। जिस दिन आप ये कहेंगे ना क्या हरज है, तो वो आपको बताएगा कि क्या हरज है। दैट इज बिदा। अल्लाह और उसके नबी के जरिए दिए हुए जो दीन के अंदर अपनी अमेंडमेंट्स करना, और ये होता मोहब्बत के नाम पे है, चाहत के नाम पे है, मजीद नेकियों के नाम पे। तो बिदत को पहचानिए, साफ सुथरे दीन को मुश्किल बना दिया जाता है, असल दीन को छोड़कर इसमें नई नई बिदात और खुराफात खड़ ली जाती हैं, फिर इन पर सख्ती से अमल किया जाता है और आवाम को ये ख्याल करवाया जाता है कि यही असल दीन है। अल्लामा इकबाल ने भी गालिबन ये शेर कहा था ना कि खिर्द का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिर्द, खिर्द कहते हैं अक्ल को, दिमाग सोच, कहते हैं अक्ल को जुनून कहने लग जाते हैं और जुनून को अक्ल, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो यह आज उम्मत मुस्लिमा का मामला है, नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब में। इस बारे में आपको सूरत अल अनाम का जो हिस्सा हम पढ़ने लगे हैं, आपको जो मैसेज मिलेगा वो क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी बिगड़ी हुई नित नए तौर तरीकों में डूबी हुई कौम पर रहम करता है, तो उनमें अपना रसूल भेजता है। अल्लाह ने अरबों में अपना आखिरी रसूल भेजकर नस्र मिन अल्लाह का वादा पूरा किया कि पूरी हुज्जत तमाम की, एक उस्ताद तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें उसने अल्लाह की बातें दी, और उनमें से वो 100-125 लोग जो मक्का से निकलकर आपके साथ हिजरत करके मदीना में आ गए, गोया कि उनके ऊपर ये अल्लाह की मदद थी। लेकिन इसके बाद जब सूरत आराफ को हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब का वादा आप 6 प्रॉफिट्स की कौमें और उनके हालात में देखेंगे। वो जहाँ सूरत आएगी मैं वहाँ कुछ इसको एक्स्ट्रा कर दूंगी। मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आज मेरा बड़ा इम्तिहान होगा। आपको कुरान कहते ही मैंने पढ़ानी है, मैंने कुछ अपने पास से नहीं बोलना। लेकिन जहाँ लफ्ज़ बिदत आएगा ना, तो कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, तहफ़ुज़ात आने लगते हैं उनके, क्योंकि आज मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये दौर सुन्नतों से ज़्यादा बिदात का दौर है। अगर अल्लाह के नबी के सहाबा में से कोई एक सहाबी आज के दौर में आ जाए, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि ये कौन से मुसलमान है। तो इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह से यही की दुआ करके यहाँ रोज़ बैठती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ुबान से वो बात निकालना जो तेरी और तेरे नबी की मुराद हो। मैं तो एक इंटरप्रेटर हूँ, मैं तो अल्लाह की बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, कोई मेरे नफ्स की बात, कोई मेरे मुआशरे की बात ना हो। और पहले से आप सबको बता दिया, आज फिर बता दूँ, किसी मसलक, किसी फिरके, किसी जमात, किसी गिरोह को प्रमोट नहीं करती। कुरान का नूर, कुरान के लफ्ज़ों में, नूरुल कुरान के ज़रिए हम घर घर पहुँचाने की नीयत किए बैठे हैं। अगर हम कमज़ोर सी ख़वातीन और बड़े लो रिसोर्सेज वाली बहनों के साथ अगर अल्लाह ये भी काम ले ले, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बनाया कि लोगों को कुरान का लफ्ज़ बलफ़्ज़ तर्जमा सिखाना है, ताकि जब वो कुरान की आयतें पढ़ें, जब तरावियों में पहला पारा पढ़ें तो रोएं, हरम में जाएं तो रोएं। बस मैंने इससे ज़्यादा नहीं किया, और मेरे बारे में पूरे मुतमइन रहिए, मैं कभी किसी फ़िकी इशू को यहाँ नहीं छेड़ती। और मेरा ईमान है कि कुरान का मौजू फिक नहीं है, फिक तो उससे अगला दर्जा है। पहले कुरान पढ़िए, समझिए तरजवीद, ग्रामर, अरबी, फिर इंशाल्लाह पढ़ाते हैं हम लोग इसको एक खास हद तक सुन्नत की रोशनी में। तफीफ ज़ाहिर, फिक का मतलब क्या है? ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी के तरीके। तो बहरहाल अल्लाह से खैर मांगेंगे। आगे है ईमान की ताकत। आज का जुमला लिखिए, मौत के अकीदे ने जिंदगी दे दी। आपको इस जुमले को सुनकर क्या याद आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है? किसी को शहीद याद आ जाएंगे, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। और किसी को इसके अंदर क्या याद आ जाएगी कि जब बंदे को ये यकीन हो जाता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो फिर उसको मौत का डर नहीं लगता। आप और मैं अपनी इस दुनिया में कई दफ़ा बड़े अहम कामों से रुके रहते हैं, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे काम होते हैं, और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कुछ काम करेंगे कब, जब हमारे पास वक्त होगा। तो इसके ऊपर एक वाकया है जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक शख्स था, वो कहीं भी दीन सीखने गया, अरबी मदरसे से फारिग हुआ। उसका इरादा क्या था कि मैं मज़ीद तालीम हासिल करूँ। इसी दौरान उसके घर से खबर आई जिसने उसके सारे हौसले ख़त्म कर दिए। और वो खबर क्या थी कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और उनके घर पर मामूली खेती बाड़ी थी, उसी में मेहनत करके उनके जो बाप थे वो घर चलाते थे। अब उनके इंतकाल के बाद उस बाप की बीवियाँ, आपको पता है अरब कल्चर में एक से ज़्यादा बीवियाँ भी होती हैं, तो ये जो शख्स थे, ये ब्रदर, वो कहते हैं कि घर में मेरे बाप की बीवी यानी सौतेली माँ और उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। और ये लड़का जो इल्म के लिए निकला है, ये घर का बड़ा था। अब ये कहते हैं कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ, जैसे वक्त में अमूमन लोगों को होता है, कि वालिद साहब की वफ़ात का मतलब क्या था, क्या वो मज़ीद तालीम हासिल करने का इरादा तरक कर दें और अपने घर चले जाएं और अपने वालिद की तरह खेती बाड़ी के काम में लग जाएं और घर का इंतज़ाम संभालें। खैर, ये इसी इरादों में थे कि मदरसे में एक बुज़ुर्ग से इनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ था, जो उनके पास गए, मिले, कहने लगे कि हज़रत मैं तो यहाँ से अब जा रहा हूँ, ये आज मैं आपसे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। बुज़ुर्ग ने कहा कि क्या बात है, क्योंकि वो जानते थे कि इसको तो इल्म का बहुत शौक़ है, तो इस पे तो नज़रें भी बड़ी हैं। याद रखिए, अच्छे तालिब इल्मों पर तो नज़रें होती हैं, उन्हीं को छुट्टी नहीं मिलती जो काम अच्छे करते हैं। खैर, इन्होंने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं अपने घर में बड़ा हूँ और अब मुझको घर का निज़ाम संभालना है, और शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मेरे हाथों में कलम की बजाय हल हो, यानी वो जो जिससे ज़मीन को फ्लो करते हैं। लिहाजा मेरे लिए मज़ीद तालीम का कोई सवाल नहीं है। वो जो बुज़ुर्ग थे ना, वो वाकई बुज़ुर्ग थे, कहने लगे, सुनकर थोड़ी देर खामोश हुए और बोले, अब ये जो जुमला मैं आपको बोलने लगी ना, ये आप लिखिएगा, क्या मौत आपके लिए नहीं है? क्या आपको यकीन है कि घर पहुंचकर आपका इंतकाल नहीं हो जाएगा? यानी उन्होंने कहा कि बाप फौत हुए हैं तो क्या आपको भी तो मौत आ सकती है। अब एक जुमला लिखिए, फिर अगर आपका भी इंतकाल हो गया तो, ये जुमला बोलकर उन्होंने छोड़ दिया। तो इसके बाद किसी के घर को संभालना कौन करेगा? कहने लगे कि हर घर का सरपरस्त और कफील अल्लाह ताला है, वह रज़ाक है, किसी के मरने और जीने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना तालीम का प्रोसेस जारी रखिए और घर का मामला अल्लाह पर डाल दीजिए। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए, अब ये मैं आप सबको कह रही हूँ अपने ऊपर रखते हुए, एक जुमला लिखिए कि मेरा भी इंतकाल हो गया है। बस ये जुमला उस नौजवान तालिब इल्म के दिल पे लगा, उन्होंने घर का ख्याल छोड़ा, मामला अल्लाह पे डाला, तालीमी जिद्दोजहद शुरू की। वो मदीना की जामिया इस्लामिया में उन्होंने एप्लीकेशन दी कोशें की कामयाब हुए। इनका दाखला मदीना की उस बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया, वहाँ जाकर तालीम ली। तालीम के साथ आपको तो वहाँ वजीफे मिलते हैं, वो वजीफे में से कुछ चीज़ जो उन्होंने हल चलाकर कमा कर घर वालों को देनी थी उनको देने लगे। इतनी आला तालीम हासिल की कि सऊदी अरब की दारुल उफ्ता फतवा देने वाली जो कमेटी है उसके तहत अफ्रीका के एक मुल्क में एक मुबल्लिग और उस्ताद की हैसियत से भेज दिए। और ये तकरीबन 1980 का वाक़ है, 11 अप्रैल 1980 में। तो उनको वहाँ अफ्रीका में गए हुए 10 साल हो चुके थे। उन्होंने उस वक़्त कहा, अब ये जुमला मेरे आप सबका, जो इल्म को छोड़ छोड़ कर रिस्क रोटी के लिए जाते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां निभाते हैं, आपको पता नहीं इस वक्त आप फरिश्तों के साए में हैं। आपकी अगर कोई कुर्सी खाली है ना, इधर तो उधर फरिश्ता है हमारे ईमान से, मछलियां आपके लिए दुआ कर रही हैं, परिंदे आपके लिए दुआ करते हैं, रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपको मिला आते हुए यहाँ। पाँव पे अगर मट्टी भी लगी है ना, तो ये भी इंशाल्लाह आपके पाँव को जहन्नम की आग से बचाने का जरिया है। छोटी सी बात पे अपने इल्मी कैरियर को छोड़कर सिर्फ रोजी रोटी पर रहना, ये कहते हैं कि मैं उस दिन अपने उस उस्ताद की बात को सुनकर जिस लाइफस्टाइल पे आया हूँ आज, इससे ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे घर वाले मुतमईन हैं और मैं एक कामयाब इंसान हूँ। और वो कहते हैं कि मेरी कामयाबी का नुक्ता आगाज उस मुख्तसर से जुमले से हुआ जिस पे आज मैं आप सबको ईमान की ताकत के साथ मुतारफ करा रही हूँ। समझ लीजिए कि आपका भी इंतकाल हो गया। मौत का अकीदा बज़ाहर एक मनफी अकीदा, मगर वो अपने अंदर ज़बरदस्त मुस्बित असरात रखता। जिसको मौत का यकीन हो ज़िंदगी के बारे में, इसका यकीन बढ़ जाता। जो अपने आप को मरता देख लेगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बामल हो जाता। तो आप चाहे बेटी हैं, चाहे आप बीवी हैं, चाहे आप माँ हैं, आप किसी वक्त फौत हो सकती हैं। फिर के कभी ना सोचिए कि आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। वो किसी ने बहुत ही प्यारी बात की थी ना कि अपनी औलादों के लिए ये कहते हो कि अगर हम मर गए तो इनका क्या होगा, ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये मर जाएंगे तो इनका क्या होगा। तो बस दुनिया ऐसी चलेगी, सब कुछ ऐसे ही होगा। आपकी मेरी ज़िंदगी में जो बहारें इस दुनिया में हैं उसको देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, तो किसी के जीने और मरने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मौत का डर निकाल दीजिए, तैयारी कीजिए। ईमान की ताकत ये भी होती है। कुछ लोग मौत की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कुछ हर वक्त इस खौफ में मैं मर ना जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, और फिर वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर चेकअप कराते हैं। कराने हैं तो कराइए, और याद रखिए अल्लाह ने जो नबी के जरिए से बात कह दी ना कि बंदा जिधर मुंह करता है उधर ही जाता है, उसी के बस डाल दिया जाता है। कुरान कहता है नवल्ली ही मा तवल्ला। तो बहुत ज्यादा अपनी जात, अपनी सेहत, अपनी बीमारी को सोचना ये भी एक हलाकत है। ये जो इल्म है ना जिससे आप और मैं इस वक्त फैजयाब हो रहे हैं ना, तो कल के पारे के साथ आखिरी जुमले बोल के सूरत आल नाम शुरू करूंगी। बिल्कुल आखिर में हमने ईमान के बीज की बात की ना, ईमान का फल मीठा कड़वा यन ही मन फल पकता है। तो एक कोट लिख लीजिए, इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। अल्लाह ताला हमें दरख्त पत्तों और फल से फैजयाब करे।